الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امیر اہل سنت سے شاعری کے بارے میں سوال جواب۔ یہ مضمون امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور ملفوظات امیر اہل سنت کی مختلف قسطوں سے لیا گیا ہے۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت، یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شاعری کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے فضولیات سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہنے والی زبان عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، امیر المومنین مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شاعری کے خواہش مندوں کے لیے مدنی پھول۔ سوال، کوئی اسلامی بھائی حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار لکھنا چاہتا ہے تو اسے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ جواب، اول تو مشورہ یہی ہے کہ اشعار لکھنے کا شوق پیدا نہ کریں، کیونکہ علم عروض باقاعدہ شاعری کا ایک مشکل فن ہے۔ نیز حمد، نعت، صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی منقبت کے اشعار لکھنے کے لیے قرآن و حدیث پر نظر ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا بہت سارا ذخیرہ، فن میں مہارت اور بہت سارا علم چاہیے۔ میں نے عوام میں سے بہت سے لکھنے والے اور والیوں کے کلام دیکھے ہیں جن میں اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں، نہ ردیف کا بھان یعنی دھیان ہوتا ہے، نہ قافیہ کا کچھ اتا پتا، اور نہ ہی وزن صحیح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو واقعی شعراء ہوتے ہیں وہ فن عروض کا تو خیال رکھ لیتے ہیں لیکن ان سے بھی شرعی معاملات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لہذا عالم دین، ماہر فن اور اچھا خاصا علم رکھنے والے شخص کا شاعری کرنا ہی سمجھ آتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی عام آدمی شاعری کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اشعار کو کسی ماہر فن عالم دین کو چیک کروائے اور ان کی ہدایات پر عمل کرے۔ شاعری کا شوق یا شہرت کی ہوس، یاد رکھیے شاعری بہت مشغول کرنے والا کام ہے، اس میں بندہ واہ واہ سے بچ نہیں سکتا ہے اور حب جا میں جا پڑتا ہے۔ جسے اللہ پاک بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی شخص کلام لکھتا ہے تو وہ اس میں اپنا مقطع ضرور لکھے گا، یعنی کلام کا سب سے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ اب اگر کسی نے اس شاعر کا کلام پڑھا اور اس میں مقطع نہیں پڑھا تو اس شاعر کو قلبی طور پر رنج و صدمہ ہوگا، بلکہ اگر اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول بھی دے گا کہ بھائی مقطع تو پڑھیں تاکہ پتا چلے کہ یہ کلام ماں بدولت نے لکھا ہے۔ ظاہراً اس نیت میں فساد موجود ہے، پھر مقطع میں نام نہ ڈالنا بھی بہت بڑی آزمائش ہے کہ اگر شاعر اپنا نام نہیں ڈالتا تو اسے یہ بات تنگ کرے گی کہ لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ کلام میں نے لکھا ہے۔ البتہ اس بات کا خیال ضروری ہے کہ میرے ان مدنی پھولوں کو بزرگوں پر قیاس نہ کیا جائے، جیسے سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے مقطع میں رضا لکھا، اسی طرح دیگر بزرگوں نے بھی اپنے کلاموں میں نام ڈالے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے بزرگان دین سراپا اخلاص ہوتے تھے، ہمارا اتنا ظرف کہاں ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنی لکھی ہوئی کتابوں پر اس خوف سے اپنا نام نہیں لکھا कि कहीं कयामत के दिन ये ना कह दिया जाए कि तुमने किताब इसलिए लिखी थी ताकि तुम्हारा नाम मशहूर हो जाए, सो तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारी वाह वाह भी हो गई, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, फिर ऐसों को औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हदीस शरीफ में तीन अफराद की तरफ इशारा है, यानी आलिम, सखी और राह खुदा में शहीद होने वाला, कि इन तीनों से उनके आमाल के बारे में पूछा जाएगा तो ये सब अपने अपने तौर पर अल्लाह पाक की नेमतों का इकरार करेंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे और बताएंगे कि हमने ये खिदमत की, ये सखावत की, ये किया, वो किया। फिर उनसे कहा जाएगा कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें आलिम, सखी और बहादुर कहा जाए, वो तो कह लिया गया। फिर उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि ये हर अमल के लिए है। हर एक गौर करे कि नाम के लिए अमल करने वालों के साथ क्या होगा। वाकई नाम की शोहरत में बड़ी लज्जत होती है। यही वजह है कि बाज लोग अतियात और डोनेशन देते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बारे में टीवी और अखबार पर खबर आनी चाहिए कि माशाल्लाह मौसूफ ने इतना इतना चंदा और डोनेशन दिया है। करने वाले ये सब करते हैं, अलल ऐलान करते हैं। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि किसकी क्या नीयत है। हम किसी की नीयत पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ औक़ात वाज़े करीना होता है कि चंदा देने वाला फुला शख्स अपनी वाह वाह चाहता है, लेकिन ख्याल रहे कि बाज़ औक़ात करीना गलत साबित होता है, लिहाजा किसी को अपनी तरफ से करीने निकालने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हुस्ने ज़न रखना चाहिए, इसी में आफियत है। खुदा की रिजा की चाहत या दादो तहसीन की तमन्ना। इसी तरह मुसन्निफ भी गौर करे, शायर भी गौर करे, मुबल्लिग भी गौर करे, मदनी काफले का मुसाफिर भी गौर करे। ये एक सांस में अपनी कारकर्दगी दे रहे होते हैं। कोई कहता है मैंने 12 माह में सफर किया, कोई कहता है 25 माह सफर किया, तो कोई कहता है मैं तो हूं ही वक्फे मदीना। ये यकीनन सआदत की बात है। मैं उनके बारे में ये नहीं कह रहा कि ये लोग रियाकार हैं, लेकिन इनको अपने दिल पर गौर कर लेना चाहिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अगर उनकी ये बात सुनकर किसी ने कह दिया कि वाह भाई आपने तो बड़ी कुर्बानी दी है, आपकी क्या बात है। इसी तरह मुबल्लिक का बयान सुनकर किसी ने कहा कि आप तो वाकई बहुत अच्छा बयान करते हैं, या किसी ने सुबहान अल्लाह कह दिया। इसी तरह नात खां से नात सुनकर कह दिया कि वाह सुबहान अल्लाह आपकी कितनी प्यारी आवाज है, या कह दिया कि आपने कितनी प्यारी आवाज पाई है। तो उन लोगों के दिल में क्या ख्याल पैदा होता है। कहीं लोगों का उनके लिए तारीफी जुमले कहना उनके लिए पगार यानी उजरत की हैसियत तो नहीं रखता। इसी तरह किरात करने वाले कारी साहिबान भी गौर करें, कहीं उन्होंने तजवीद के सारे कवायद माइक पर तिलावत के लिए तो वक्फ नहीं किए हुए। जब ये अपनी नमाजें पढ़ते हैं उसमें कवायद तजवीद का ख्याल रखते हैं, कहीं ये सारे कवायद का लिहाज सिर्फ आवाम से दादो तहसीन वसूल करने और वाह वाह सुनने के लिए तो नहीं करते। याद रखिए मेरी इन तमाम बातों का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर कोई कारी साहिब अच्छी तिलावत करें तो उनको ये कहा जाए कि ये तो अवाम को दिखाने के लिए इस तरह पढ़ रहे हैं, या इनके दिल में इखलास नहीं है वगैरह। जाहिर है किसी को भी इस तरह बदगुमानी करने और दूसरों पर हुक्म लगाने की इजाज़त नहीं है। याद रखें अल्लाह पाक को सब पता है। हमें चाहिए कि हम गौर करें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों बयान कर रहे हैं, क्यों दर्स दे रहे हैं, क्यों मदनी काफले में सफ़र कर रहे हैं, क्यों इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत कर रहे हैं, क्यों नाते पढ़ रहे हैं, क्यों तिलावतें कर रहे हैं, क्यों किरातें कर रहे हैं, क्यों तहज्जुद पढ़ रहे हैं, क्यों नेक आमाल के रिसाले पर अमल कर रहे हैं। ऐ काश हम वही काम करें जिसमें सवाब मिले और रब की रिजा हासिल हो। अल्लाह करीम हमें इखलास नसीब करे और हुब्बे जाह से बचाए। गुमनाम बंदों की शानो अजमत, हुब्बे जाह का मतलब है अपनी इज्जत व शोहरत की ख्वाहिश करना और ये चाहना कि मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मेरी इज्जत करें, मेरी खूब वाह वाह करें, या इस नीयत से अपने खानदान की निस्बत बयान करना। मसलन किसी ने अपने आप को सैयद कहा या अपने बारे में बताया कि मैं फुला पीर साहिब की औलाद हूँ या फुला बुजुर्ग से मेरी निस्बत चली आ रही है, मैं ये हूँ वो हूँ, ताकि लोग मेरी इज्जत करें, मेरे हाथ चूमें और कहें वाह भाई माशा अल्लाह आप उनके पोते हैं या उनके पड़पोते हैं या उनके बेटे हैं, या कहें अरे वाह आप फुला हैं वाह भाई। अगर ये खुद अपना तारुफ ना भी करवाए तब भी ख्वाहिश होती है कि मेरा तारुफ करवाया जाए कि मैं कौन हूँ, किस का रिश्तेदार हूँ, किस बड़ी शख्सियत के साथ मेरा ताल्लुक़ है या मैं किस बड़ी शख्सियत के साथ होता हूँ। जी हाँ, जो किसी शख्सियत के साथ होता है उस शख्सियत की वजह से भी उसकी इज्जत या आवभगत की जाती है, ये भी एक ख़तरा है। देखा जाए तो हर मामले में रिस्क फैक्टर मौजूद है। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए और उन गुमनाम बंदों का सदका मिले जिनके बारे में कहा गया कि इनको दरवाजे से दूर कर दिया जाता है, इनको पूछा नहीं जाता। बीमार होते हैं तो इयादत करने वाले नहीं होते, फौत हो जाए तो लोग जनाजे में आने की जहमत नहीं करते। ऐसे गुमनाम बंदों की अहादीसे मुबारका में शाने बयान हुई हैं। बज़ाहिर गुमनाम को कोई नहीं जानता लेकिन उसके लिए रब का जानना काफ़ी है, यानी बंदे जाने ना जाने इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रब तो जानता ही है, उनके लिए यही काफ़ी है। अल्लाह पाक चाहता है तो अपने ऐसे गुमनाम बंदों को शोहरत अता फरमा देता है, ये उसी की मर्जी और मशीयत है। लिहाजा अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम, साहबा किराम रदी अल्लाहु अन्हुम, औलिया किराम और उलमा किराम रहमतुल्लाही अलैहिम अजमाइन की शोहरत के बारे में ये नहीं सोचना कि ये हस्तियाँ गुमनाम नहीं थीं तो उनके फजाइल हासिल नहीं होंगे। इन हस्तियों के अपने अपने मकामात हैं। शोहरत हम जैसे लोगों के लिए खतरे का जाल है, एक जगह से बचते हैं तो दूसरी जगह फंस जाते हैं और फिर खुद साख्ता मसलहतें तलाश करके खुद को मुतमईन करते हैं कि मेरी ये नीयत नहीं थी, मेरा वो मकसद नहीं था, यह मेरी मुराद फलां चीज थी वगैरह वगैरह। और बाज़ औक़ात खुद को बचाने या झेप मिटाने के लिए झूठ का सहारा भी ले लेते हैं और ये सब वबाल इसी शोहरत का होता है। अल्लाह करीम हम सबको सच्चा कर दे और हमेशा हमेशा के लिए हमसे राजी हो जाए। शायरी का शौक रखना कैसा? सवाल, मुझे शायरी का बहुत शौक है, बराए करम मेरी रहनुमाई फरमाइए। जवाब, शायरी का शौक अच्छा नहीं है। याद रहे कि अशआर फी नफ्सी ही बुरे नहीं, क्योंकि वो एक कलाम है। अगर अशआर अच्छे हैं तो वो अच्छा कलाम है और बुरे अशआर हैं तो वो बुरा कलाम है। जैसा कि हजरत उरवा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शेर एक कलाम है, अच्छे अशआर अच्छे कलाम की तरह हैं और बुरे अशआर बुरे कलाम की तरह हैं। और हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, बाज़ अशार अच्छे होते हैं और बाज़ बुरे होते हैं, अच्छे अशार को ले लो और बुरे अशार को छोड़ दो। मैंने शुआरा के कलाम में कई जगह कुफरियात देखे हैं। कई नामवर शुआरा जिन्हें तारीख में बड़ी अहमियत दी जाती है, उन्होंने भी ऐसी खताएं की हैं कि उनके अशार पढ़कर बंदा सर पकड़ ले कि कहीं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तोहीन आमेज कलिमात लिख दिए, कहीं जन्नत का मजाक उड़ाया, तो कहीं फरिश्तों के तकद्दस पर हमला किया। शायद इन्हीं शायरों के बारे में किसी ने कहा है, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे, क्योंकि जिसने ऐसे कुफरियात बके जिस पर इल्तिजाम कुफर का हुक्म लाजिम आता है और बगैर तौबा किए मर गया तो वो मुर्तद हुआ और हमेशा जहन्नम में रहेगा। कुफ्र की दो किस्में हैं, नंबर वन लुजूम कुफ्र, नंबर टू इल्तिजाम कुफ्र। लुजूम कुफ्र ये है कि जो बात कही वो ऐन कुफ्र नहीं मगर कुफ्र तक पहुंचाने वाली होती है, और इल्तिजाम कुफ्र ये है कि जरूरियात दीन यानी वो मसाइले दीन जिनको हर खासो आम जानता हो उनमें से किसी चीज का वाज़े तौर पर खिलाफ करना। ये कतअन इजमाअन यानी कतई तौर पर बिल इत्तेफाक कुफ्र है, अगरचे खिलाफ करने वाला कुफ्र के नाम से चिढ़ता और कमाले इस्लाम का दावा करता हो। मजीद मालूमात के लिए दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब का मुताला कीजिए। आजकल हर कोई शायर बनने लगा है, बहुत से ऐसे डमी शायर जिन्हें शेर कहना ही नहीं आता, उनके बारे में किसी शायर ने एक शेर कहा है, शायरी आती नहीं पर शायरी करने लगे, शायरी चारा समझकर सब गधे चरने लगे। शायरी कोई चारा नहीं, ये एक फन है। अगर आपको शायरी का फन नहीं आता और आप शायरी करने बैठ गए तो ये ऐसा है जैसे आप दर्जी नहीं मगर कपड़ा सीने बैठ जाएं। शायर के लिए ज़रूरी है कि वो जिस ज़बान में कलाम लिखना चाहता है उसके पास उस ज़बान के अल्फाज का बहुत बड़ा ज़खीरा हो, लेकिन इन लोगों को तो पूरी तरह उर्दू भी नहीं आती और ना ही उन्हें ये पता होता है कि रदीफ, काफिया और बहर किसको बोलते हैं। ये लोग किसी गाने या नात शरीफ के वजन पर अशार लिख लेते होंगे या फिर कोई खुश इल्हान नात ख्वाह हो तो वो तरन्नुम में अशार लिख लेता है, और आवाज अच्छी हो तो तरन्नुम की वजह से बेवजन अशार भी खींच तान के पढ़ लेता है, और शायरी ना जानने वाले लोग उसके कलाम को पढ़ते चले जाते हैं। हालांकि इसमें फने शायरी की बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन इन्हें बोले कौन। अगर कोई बोल दे कि तुम्हारा कलाम अच्छा नहीं तो फिर देखो कैसा तमाशा खड़ा होता है। सवाल, नातिया शायरी करना कैसा है? जवाब, सुन्नते सहाबा अलैहिम रिदवान है, यानी बाद सहाबा किराम मसलन हजरत हसान बिन साबित रदी अल्लाह अनहु और हजरत जैद रदी अल्लाह अनहु वगैरह हुमा से नातिया अशआर लिखना साबित है। ताहम ये जहन में रहे कि नात शरीफ लिखना निहायत मुश्किल फन है, इसके लिए माहिर फन आलिम दीन होना चाहिए, वरना आलिम ना होने की सूरत में रदीफ, काफिया और बहर यानी शेर का वजन वगैरह को निभाने के लिए खिलाफे शान अल्फाज तरतीब पा जाने का खदशा रहता है। अवामुन नास को शायरी का शौक चराना मुनासिब नहीं कि नसर के मुकाबले में नज्म में कुफरियात के सुदूर का ज्यादा अंदेशा रहता है। अगर शरई अगलास से कलाम महफूज रह भी गया तो फजूलियात से बचने का जहन बहुत कम लोगों का होता है। जी हाँ, जिस तरह आम गुफ्तगू में फजूल अल्फाज की भरमार पाई जाती है इसी तरह बयान और नातिया कलाम में भी होता है। सवाल, क्या गैर आलिम नात शरीफ नहीं लिख सकता और उसको नात पढ़नी सुननी भी नहीं चाहिए? जवाब, जो उलमाए अहले सुन्नत का सोहबत याफ्ता हो, शरीयत के ज़रूरी अहकाम जानता हो और हर हर मिसरे की शरई तफ्तीश किसी आलिम से करवा लिया करता हो, उसके लिखने और उसका लिखा हुआ उलमा का तफ्तीश शुदा कलाम पढ़ने में हर्ज नहीं। मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाही अलैह गैर आलिम के नातिया शायरी करने के सख्त खिलाफ थे। सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाही अलैह के इरशादाते आलिया का खुलासा यही है कि जाहिल नात गो शायरों के कलाम बसा औकात कुफरियात से भरपूर होते हैं, लिहाजा ऐसे कलाम पढ़ने वालों को महफिल नात में बुलाना भी नाजायज, ऐसी नात खानी में किसी को भेजना भी हराम और ऐसे कलाम का सुनना भी गुनाह। आला हजरत दो के अलावा कसदन किसी का उर्दू कलाम ना सुनते। सवाल, आला हजरत कौन कौन से शुआरा का नातिया कलाम सुनना पसंद फरमाते थे? जवाब, नात गो शायरों की अक्सरियत अपने कलाम में चूंकि अहकाम शरीयत का लिहाज नहीं करती है, इस वजह से आप रहमतुल्लाहि अलैह कसदन सिर्फ दो शुआराए किराम, नंबर वन हजरत मौलाना किफायत अली काफी और नंबर टू हजरत मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाहि अलैहिमा का कलाम समाअत फरमाते थे। मकतबतुल मदीना की 561 सफहात पर मुश्तमिल किताब मलफूजात आला हजरत सफा 225 पर है। एक साहिब हजरत शाह नियाज अहमद साहिब रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स में बरेली शरीफ तशरीफ लाए थे, आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। कुछ अशार नात शरीफ के सुनाने की दरख्वास्त यानी नात पाक पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। आला हजरत ने इस्तफसार फरमाया, किसका कलाम? उन्होंने कलाम लिखने वाले का नाम बताया। इस पर इरशाद फरमाया, सिवा दो शुआरा के कलाम के किसी का कलाम में कसदन यानी इरादतन अपनी ख्वाहिश से नहीं सुनता, फकत इन दो यानी मौलाना किफायत अली काफी और मेरे भाई हसन मियाँ मरहूम का कलाम सुनता हूँ। सफा 227 पर मजीद फरमाते हैं, और हकीकतन नाज शरीफ लिखना नहायत मुश्किल है जिसको लोग आसान समझते हैं। इसमें तलवार की धार पर चलना है, अगर बढ़ता है तो उलूहियत में पहुंच जाता है और कमी करता है तो तनकीस यानी तौहीन होती है। अलबत्ता हम्द आसान है कि इसमें रास्ता साफ है, जितना चाहे बढ़ सकता है। गर्ज हम्द में एक जानिब असलन हद नहीं और नाज शरीफ में दोनों जानिब सख्त हद बंदी है। नातिया शायरी हर एक का काम नहीं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी महफिल में गैर शरई कलाम पढ़ा जा रहा हो तो जो मालूमात रखता हो उस पर वाजिब है कि इसलाह करे, जबकि ये जन्ने गालिब हो कि गलती करने वाला मान जाएगा, और अगर मानने की उम्मीद ना हो तो फौरन उठ जाए। अगर कैसेट वगैरह में नाजायज अल्फाज या मानी वाला शेर सुने तो फौरन टेप रिकॉर्डर बंद कर दीजिए, और आइंदा भी कैसेट में उस शेर को सुनने से परहेज कीजिए, और मुमकिन सूरत में कैसेट और नात खान और नात गो शायर वगैरह की इसलाह की तदबीर भी कीजिए। किस किस का कलाम पढ़ना चाहिए? सवाल, किस किस शायर की लिखी हुई नातें पढ़ना सुनना चाहिए? जवाब, हर उस मुसलमान की लिखी हुई नात शरीफ पढ़नी सुननी जायज है जो शरीयत के मुताबिक हो। अब चूंकि कलाम को शरीयत की कसौटी पर परखने की हर एक में सलाहियत नहीं होती, लिहाजा आफियत इसी में है कि मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत का कलाम सुना जाए। उर्दू कलाम सुनने के लिए मशवरतन नाते रसूल के 7 हरूफ की निस्बत से 7 अस्माए गिरामी हाजिर हैं। नंबर वन, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाही अलैह। नंबर टू, उस्ताद जमन हजरत मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाही अलैह। नंबर थ्री, खलीफा आला हजरत हजरत मद्दाहुल हबीब हजरत मौलाना जमीलुर रहमान रजवी रहमतुल्लाही अलैह। नंबर फोर, शहजादे आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान रहमतुल्लाही अलैह। नंबर फाइव, शहजादाए आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाही अलैह। नंबर सिक्स, खलीफाए आला हजरत सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाही अलैह। नंबर सेवन, मशहूर मुफस्सिर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह वगैरह। सवाल, क्या गैर आलिम शायर का कलाम पढ़ने सुनने की भी कोई सूरत है? जवाब, अगर गैर आलिम शायर का कलाम पढ़ना सुनना चाहें तो पहले किसी माहिर फन सुन्नी आलिम से उस कलाम की तस्दीक करवा लीजिए। इस तरह इंशाअल्लाहुल करीम ईमान की हिफाजत में मदद मिलेगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी कुफरिया शेर के माना समझने के बावजूद उसकी ताईद करते हुए झूमने और नारहाए दादो तहसीन बुलंद करने के सबब ईमान के लाले पड़ जाए। गैर आलिम को नातिया शायरी से अव्वलन बचना ही चाहिए, और इन अहम मसाइल के इल्म से कबल अगर कुछ कलाम लिख भी लिया है तो जब तक अपने तमाम कलाम के हर हर शेर की किसी फने शायरी के माहिर आलिम दीन से तफ्तीश ना करवा ले, उस वक्त तक पढ़ने और छापने से मुजतनिब यानी दूर रहे। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाही अलैह चूंकि पाए के आलिम दीन थे, आपके शेर का हर मिसरा ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक हुआ करता था, लिहाजा बतौर तहदीस नेमत अपने मुबारक कलाम के बारे में एक रुबाई इरशाद फरमाते हैं। हूँ अपने कलाम से निहायत महजूज, बेजा से है अलमिन्नतु लिल्लाही महफूज, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे अहकामे शरीयत मलहूज। खुलासा, मैं अपने कलाम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा हूं क्योंकि मुझ पर अल्लाह पाक का एहसान है कि मेरा कलाम फजूल बातों से महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान पाक से नात गोई सीखी है, मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलाम शरीयत के ऐन मुताबिक है। सैयदी अहमद रजा ने खूब लिखा है कलाम, उनके सारे नातिया अशआर पर लाखों सलाम। नातिया अशआर चेक करवाइए। सवाल, उलमाए किराम से अपने नातिया अशआर चेक करवाना क्यों जरूरी है? जवाब, बाज़ औक़ात शुआरा भी ऐसी वाहियात बातें करते हैं कि बस, जाहिर है ये लोग दुनियावी शायर होते हैं, इनको नात लिखने का शौक चढ़ता है या हमद बयान करने की ख्वाहिश होती है या बुजुर्गान दीन की मनकबत लिखने की सूझती है तो कुछ का कुछ लिख डालते हैं। ये उनकी फील्ड नहीं है बल्कि उलमाए किराम का शोबा है। किसी भी गैर आलिम का काम नहीं है कि वो नात या हमद वगैरह लिखे। जाहिर है इन शुआरा को ना अल्लाह पाक से मुतालिक अकायद की मालूमात होती है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे की पहचान। तो जब ये शान मुस्तफ़ा बयान करने जाते हैं तो इल्म ना होने की वजह से तौहीन कर बैठते हैं या माज़ अल्लाह नात को उलूहियत के मर्तबे पर ले जाते हैं, बल्कि कभी तो सरीह कुफ्रियात तक भी कह जाते हैं और अवाम उनके कलाम में नात समझकर पढ़ रहे होते हैं। गैर आलिम शायर खुद को उलमाए किराम का मोहताज रखे वरना कुफर में जा पड़ेगा और मालूम भी ना होगा। शोरा हजरात मुझे अपना मुखालिफ ना समझें, ना मुझसे नाराज हों, ना मेरा आपसे मुकाबला है, ना मैं किसी मुशायरे में हिस्सा लेता हूँ और ना ही मैं ज्यादा फन शायरी जानता हूँ। बस थोड़ा बहुत इल्म है जिससे गुजारा हो जाता है और कलाम लिखने के बाद हत्तल इम्कान उसे चेक करवाता हूँ। नात में लफ्ज तू या तेरा कहना कैसा? सवाल, सरकार अली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात में तू या तेरा के अल्फाज इस्तेमाल करना बेअदबी है? जवाब, जी नहीं, इसलिए कि तादीम व तौहीन का दारोमदार उर्फ पर होता है और हमारे मुआशरे में नातिया कलाम में ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल को बेअदबी नहीं समझा जाता, लिहाजा इसमें हर्ज नहीं। नात लिखना एक फन है जिसमें मुख्तलिफ बहरों के मखसूस औजान पर अल्फाज लाए जाते हैं जिससे कलाम में हुस्न पैदा होने के साथ साथ इसे तर्ज में पढ़ना भी आसान हो जाता है। यही वजह है कि किसी शायर के लिखे हुए कलाम में तब्दीली बल्कि एक हर्फ का भी फर्क करने से न सिर्फ कलाम का सारा हुस्न खत्म हो जाता बल्कि उसे किसी तर्ज में पढ़ना भी दुश्वार हो जाता है। लिहाजा अदब इसी में है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शरीयत के दायरे में लिखे गए नातिया कलाम को मिनो अन यानी जैसा लिखा है वैसे ही पढ़कर इसके हुस्न को बरकरार रखा जाए, जैसे आला हजरत रहमतुल्लाही अलैह का मशहूर जमाना कलाम है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बाज लोग इसे यूं पढ़ते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा आपका, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला आपका। इस तरह सारे नातिया कलाम का हुस्न खत्म कर देते हैं। हालांकि जिन्होंने ये कलाम लिखा है उनका इश्क मुस्तफ़ा और बारगाह मुस्तफ़ा का अदब व एहतराम अपने तो क्या बेगानों को भी मुसल्लम यानी तस्लीम शुदा है। एक बार कराची के किसी इलाके में होने वाली महफिल नात में एक मशहूर व मारूफ आलिम दीन तशरीफ फरमा थे। इनके सामने एक नातवा ने यही कलाम पढ़ना शुरू किया, लेकिन अदब के जोम में तेरा के बजाय हर जगह आपका के अल्फाज लगाकर सारे कलाम को बिगाड़ कर रख दिया। बिलाखिर जब आलिम साहिब के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो इरशाद फरमाया, आला हजरत रहमतुल्लाही अलैह तुमसे ज्यादा अदब जानते थे, लिहाजा जो लिखा है वो ही पढ़ो। शायर के कलाम में तब्दीली करना कैसा? सवाल। कुछ शुआरा कलाम के आखिर में अपने नाम के साथ आजिजी के लिए कुछ अल्फाज लिखते हैं, क्या हम इन अल्फाज को तब्दील कर सकते हैं? जवाब। बाज़ औक़ात बुजुर्ग अपने लिए आजिजी के ऐसे अल्फाज लाते हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते। मसलन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाही अलैह का एक शेर है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। इसके बाद अगले शेर में आपने अपने लिए जो आजिजी के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो मैं अपनी जात के लिए कहता हूं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात अत्तार, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाही अलैह ने ये लफ्ज अपने लिए आजिजी के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसमें मेरी अपनी सोच ये है कि ये लफ्ज ना कहा जाए बल्कि यूं कहा जाए, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, या तुझसे शैदा हजार फिरते हैं, या आशिक हजार फिरते हैं, या इस तरह का कोई ऐसा लफ्ज लाया जाए जो इस मकाम पर मौजू हो और शेर का वजन भी ना टूटे। जब नातवा ये शेर पढ़ें तो वजाहत कर दें कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाही अलैह ने यहाँ आजिजी के तौर पर अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने इसको तब्दील किया है। आजकल के नात खानों को इतना बोलना आता नहीं है, अलबत्ता इतना बोल लेते हैं कि 2 दिन से थका हुआ हूं, 12 दिन का थका हुआ हूं, रोज महफिलें हैं, चार चार बज जाते हैं वगैरह। जहां वजाहत करनी होती है वहां शायद उन्हें सुचका भी नहीं पड़ता, यानी जहन में ही नहीं आता कि वजाहत कर दें। मैं यहां सब की बात नहीं कर रहा बल्कि दिल जलाने के लिए एक बात कर रहा हूं कि जहां वजाहत करनी है वहां नहीं करते। बाज़ोकात नात खान अशआर का खुलासा कर रहे होते हैं, इसके लिए भी इल्म होना चाहिए। खुसूसन आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाही अलैह के कलाम की वजाहत में ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है क्योंकि इनके कलाम डिफिकल्ट यानी मुश्किल होते हैं। हदायके बख्शिश की शुरुहात लिखी हुई हैं। अगर कोई नात खान उलमा की लिखी हुई शुरुहात से वजाहत याद करके बयान करता है तो कोई हरज नहीं है। क्या इस्लामी बहनें नात के सीगों को बदल सकती हैं? सवाल। एक कलाम है, मैं मदीने चला, अगर इस्लामी बहनें इसको मैं मदीने चली पढ़ेंगी तो क्या ये गलत होगा? जवाब। किसी शायर का कलाम पढ़ना हिकायत करना कहलाता है, यानी जैसा उसने कहा हमने वैसा बयान कर दिया। अब अगर इस्लामी बहनें मैं मदीने चला पढ़ेंगी तो अजीब लगेगा, इसलिए इन्हें मैं मदीने चली पढ़ना चाहिए। लेकिन इस कलाम में आगे भी मर्दाना अल्फाज आ रहे हैं, ये कहाँ कहाँ तब्दीली करेंगी। बहरहाल चला को चली करना ज़रूरी होगा क्योंकि मुअन्नस के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है। अगर चला कहेंगी तो इस्लामी बहनें हंसेंगी और मजाक करेंगी। इसके अलावा बहुत से कलाम ऐसे भी हैं जिनमें तब्दीली की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो पढ़ सकती हैं और पढ़े भी जा रहे होते हैं। याद रहे, किसी शायर के अशआर अपने नाम पर चढ़ा लेना कि ये मैंने लिखे हैं झूठ और खयानत है, ये बहुत मायूब समझा जाता है और इसे दीनी सरका यानी इल्मी चोरी कहते हैं। अलबत्त बाज़ औक़ात ऐसा इत्तेफाक भी होता है कि एक ही तरह का मिसरा दो शायरों ने लिखा होता है जिसे अदबी यानी फनी जबान में तवारुद बोलते हैं। अमीर अहले सुन्नत के गुजराती कलाम। सवाल। आपने सबसे पहले कौन सा कलाम लिखा था? जवाब, दरअसल मैं गुजराती मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, जिसका अब हमारे यहां इतना चलन नहीं है। गुजराती इतनी मजलूम हो चुकी है कि जो लोग खुद कहते हैं कि हम गुजराती हैं, जब मैं उनसे गुजराती में बात करता हूं तो बाद औकात उन्हें ताज्जुब होता है, क्योंकि वो बेचारे इस तरह की गुजराती बोलते हैं जिस तरह बाज लोग अजीबो गरीब उर्दू बोलते हैं। बहरहाल, जिस तरह उर्दू है, इसी तरह गुजराती भी बाकायदा एक जबान है और बहुत अच्छी जबान है। पहले मैं गुजराती के नातिया मुशायरों में हिस्सा लेता था और नातिया या मनकबत के कलाम लिखता था। इस मौके पर हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने अर्ज की, आप अपना कोई गुजराती शेर तो सुनाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया, मैंने वो अशआर जमा नहीं किए क्योंकि उस वक्त मेरा जमा करने का जहन नहीं था। कभी कभी याद करता हूँ तो कोई कोई शेर याद आ जाता है। एक नात का मक्ता मुझे याद आ रहा है, मांगियो छे इश्के नबी, मांगी ना दुनिया एणे, मुझने अत्तार समझदार नजर आवे छे। यानी नबी का इश्क मांगा, दुनिया की दौलत नहीं मांगी, मुझे अत्तार समझदार नजर आता है। ये मेरा बहुत पुराना एहसास था कि दुनिया की दौलत के बजाय आका की मोहब्बत की फरावानी नसीब हो जाए और इश्के रसूल का जखीरा मिल जाए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायरों की कही हुई बातों में से सबसे ज्यादा सच्ची बात लबीद का ये कलमा है, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाहु बातिल, यानी खबरदार, अल्लाह के सिवा हर शय फना होने वाली है।